मुख्य समाचारों में, न्यू साउथ वेल्स में 99 नए स्थानीय कोविड-19 मामले, एक और मृत्यु। लॉकडाउन में सिडनी के लोगों को अतिरिक्त सरकारी सहायता की घोषणा होगी और WHO भारत के कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे सकता है। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। दक्षिण पश्चिमी सिडनी में फेयरफील्ड के निवासी जो स्थानीय सरकारी क्षेत्र के बाहर काम करते हैं, उन्हें अब हर 3 दिनों में कोविड-19 के लिए परीक्षण कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शहर का प्रकोप अब क्षेत्रीय न्यू साउथ वेल्स में फैल रहा है। राज्य में सिडनी के पूर्वी उपनगरों में सामुदायिक प्रसारण के 99 नए मामले आए हैं और 70 की आयु के दशक में एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से संबंधित मृत्यु की रिपोर्ट है। इन नए संक्रमणों में 64 दक्षिण पश्चिमी सिडनी में दर्ज किए गए, जबकि एक गोल्बन में दर्ज मामला उस आवश्यक कार्यकर्ता का है जिसने दक्षिण सिडनी से इस क्षेत्रीय शहर की यात्रा की है। प्रीमियर ग्लैडिस पेरिजिक्लियन का कहना है कि अधिकारी हॉटस्पॉट से काम के लिए घर छोड़ने वाले लोगों की संख्या को लेकर चिंतित हैं।
If you live in the local area of the Fairfield local government area, you will need to have regular COVID tests to demonstrate that you are COVID free, even if you don't have symptoms, because unfortunately we see what we call asymptomatic people, people who don't have symptoms are leaving the house, going out of that local area to work, and unfortunately sending the virus to other parts of Greater Sydney or elsewhere, and that's what we need to stop.
अब ये गुरुवार 15 जुलाई तक ही पता चलेगा कि क्या लॉकडाउन को इस सप्ताह से आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। फेडरल विपक्ष का कहना है कि ग्रेटर सिडनी लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए कोई भी आर्थिक सहायता पैकेज लोगों को अपनी नौकरी रखने की गारंटी देना चाहिए। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरिजिक्लियन द्वारा आज सहायता के विवरण का अनावरण करने की उम्मीद है। 7 दिनों से अधिक समय तक लॉकडाउन पर रहने पर जिन लोगों का काम छूट गया है, वो वर्तमान में प्रति सप्ताह $500 तक के आपदा भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लेबर के ट्रेजरी प्रवक्ता जिम चार्मस का कहना है कि ये कुछ समय से स्पष्ट है कि फेडरल सरकार से और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।
One of the mistakes that the government made in Melbourne and in Victoria was they came in with too little, too late, too narrowly defined. And so the damage done by Scott Morrison's lockdown there, the bill that had to be paid for his incompetence on vaccines and quarantine was never properly paid. There was too little support there, and we don't want to see them repeat that mistake. What we want to see in Sydney is a genuine package of support that guarantees that people will keep their jobs.
Melbourne परिवार के 4 सदस्यों में से एक सदस्य जो हाल ही में New South Wales से Red Zone Permit से लौटा है, उसने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। अधिकारियों का कहना है कि लक्षण के पहले संकेत पर ही परिवार ने वायरस का परीक्षण तो किया, लेकिन वो शनिवार 10 जुलाई और रविवार 11 जुलाई को एक सुपरमार्केट में गए। परिणाम स्वरूप क्रेगीबर्न सेंट्रल के कोल्स और ब्रॉड मेडोज में सेंट्रल पेट्रोलियम को एक्सपोजर साइट्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कोविड-19 कमांडर जेरोम वीमर का कहना है कि परिवार को अधिकारियों द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक सही काम किया।
They've got tested when they need to get tested, and they've been fulsome in their information with our contact tracers in the conversations we had with them only yesterday. This is such a new case, and the exposure site we're talking about on Saturday in terms of the access to coal. So we're confident in what we're doing.
इस बीच न्यू साउथ वेल्स के संक्रामक साइट से आने वाले रिमूव लिस्ट्स के कारण मेलबर्न के उत्तर पश्चिम में एक अपार्टमेंट परिसर में 150 से अधिक लोग लॉकडाउन में हैं। जो कोई भी गुरुवार यानी 8 जुलाई को दोपहर 1 बजे से रात मध्य रात्रि के बीच में मैरीबोंग के थॉमस होम स्ट्रीट पर एरियल अपार्टमेंट में था, उसे तुरंत परीक्षण करने और 14 दिनों के लिए आइसोलेट होने की आवश्यकता है। वो कोई जो शुक्रवार 9 जुलाई से सोमवार 12 जुलाई के बीच इस परिसर में गया हो, उसे भी परीक्षण करवाना चाहिए और स्वयं को अलग थलग करना चाहिए जब तक कि वो कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण ना करने। उधर न्यू साउथ वेल्स के कोरोना वायरस संक्रमित रिमूव लिस्ट द्वारा एक क्षेत्रीय सर्विस स्टेशन पर जाने के कारण दर्जनों दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई लोगों को भी आइसोलेट होने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया हेल्थ ने एडिलेड से 97 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में टेलम बेंट में शेल सर्विस स्टेशन की पहचान एक एक्सपोजर साइट के रूप में की है। प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि शुक्रवार 9 जुलाई को शाम 5:20 से शाम 7 के बीच स्टेशन पर आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने करीबी संपर्कों के साथ अलग थलग रहना चाहिए और परीक्षण करवाना चाहिए।
We're very concerned about this Delta variant and we will work very quickly now to put everybody that we need to into quarantine so that we can minimize the risk of this spreading in South Australia.
Queensland ke log New South Wales mein phanse reh sakte hain agar coronavirus ka prakop Greater Sydney se aage phailta hai. क्वींसलैंड में 3 नए मामले दर्ज किए गए, 1 होटल संगरोध में और 2 घरेलू संगरोध में। लेकिन प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलिशे का कहना है कि वो अभी इस स्तर पर चिंतित नहीं हैं। गोल्बन में संभावित प्रकोप के बावजूद क्वींसलैंड ने न्यू साउथ वेल्स पर कोई मजबूत सीमा प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन सुश्री पैलिशे लोगों को वापस घर लौटने का आग्रह कर रही हैं।
We are still monitoring the situation in New South Wales very closely. And of course, Dr. Young is giving us updates. We're monitoring very closely that sewage testing. We just heard breaking news that there's a positive case in Goulburn. So we are keeping a very close eye on what's happening in New South Wales. So I just want to reassure Queenslanders that if it gets to the stage that we have to close, we will.
पर्थ और आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला एक तूफान अब आगे निकल चुका है, लेकिन अधिकारी सप्ताह के अंत में और अधिक हानिकारक स्थितियों की चेतावनी दे रहे हैं। मौसम विज्ञान ब्यूरो का कहना है कि राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थिति कल यानी बुधवार 14 जुलाई से फिर से खराब होने की उम्मीद है। भारत में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के टीके को जो आपातकाल मंजूरी के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी नहीं दी है। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के टीके की समीक्षा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही आपातकालीन इस्तेमाल के लिए इसे मंजूरी दी जा सकती है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या विश्वनाथन ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के वेबिनार में कहा कि WHO इस टीके की समीक्षा कर रहा है। WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार EUL एक प्रक्रिया है, इसके तहत नए तथा गैर लाइसेंस प्राप्त उत्पादों का इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थितियों में किया जा सकता है। और भारत में पिछले 24 घंटों में 32,906 कोविड-19 मामले दर्ज हुए हैं। मरीजों की ठीक होने की दर 97.28% पर हो गई है और पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.81% पर है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 75 सेंट और भारत के 55.77 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में AFL में जिलोंग कैप्टन जॉल सेल्विल्ट क्लब के साथ एक नए साल के अनुबंध पर सहमत होने के बाद अगले साल 16वें AFL सत्र में खेलेंगे। सेलवुड क्लब के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 3 प्रीमियरशिप, 3 बेस्ट एंड फेयरेस्ट अवार्ड्स और 6 ऑल ऑस्ट्रेलियन सेलेक्शंस जीते हैं। वो जिलोंग के कप्तान के रूप में अपने 10वें सत्र में हैं और अब तक रिकॉर्ड 215 खेलों में उन्होंने क्लब का नेतृत्व किया है। और अब बात मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बुधवार को पर्थ में बौछारें रहेंगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में भी बौछारें, अधिकतम तापमान 14 डिग्री न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 11 डिग्री न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में भी बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 19 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।